सबको कैसे लगा यहाँ पे?
बहुत अच्छा।
रात को नींद आई सबको? कहाँ सोए सब लोग? यहाँ पे कौन कौन सोए इस कमरे में? अच्छा, नहीं सारे। और मंदिर में कौन कौन सोए? कौन से मंदिर में? और अन्य कमरों में कौन सोए? हाँ, प्रसाद हॉल में कौन सोए? प्रसाद हॉल में एक, बस दो
यहाँ पे सोए इस तरफ।
और यहाँ पे कौन सोए इस तरफ?
किचन
टीम। और अन्य जगह में कौन कौन सोए? कहाँ सोए?
आश्रम।
आश्रम जंगल में कोई गया सोने के? शुरुआत में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन जो भक्त यहाँ हमेशा रहते हैं उनको आदत हो गई। अभी उनको कोई आदत पड़ गई, से हम बिगड़ गए हैं। सब कुछ बटन दबा के हमको चाहिए, स्विच चालू कर दिया, बटन दिया, मिलना चाहिए। फिर भी यहाँ मैं मिल गया। किसी ने गर्म पानी तैयार करके रखा था, किसी ने पानी भर के रखा था, कोई तकलीफ हुई नहीं। प्रसाद किसी ने और बना के रखा था, है ना? यहाँ का जीवन बहुत अच्छा जीवन है। कितने भक्तों को लगता है कि यहाँ का जीवन अच्छा जीवन है? किसको लगता है कि इतना अच्छा जीवन नहीं है? शहर की याद आ रही है। वैसे भी ब्रह्मचारी के लिए तपस्या बहुत जरूरी है। एक दृष्टि से ज्यादा तपस्या नहीं है, तपस्या लग रहा है?
नहीं,
तपस्या कर रहे हैं
वहाँ पे ज्यादा,
वहाँ तपस्या ज्यादा है।
हालांकि इतना शारीरिक श्रम वगैरह इधर उधर घूम रहे हैं सीधे, लेकिन तपस्या करते हुए भी उनको नहीं लग रहा है कि तपस्या कर रहे हैं। लग रहा है जंगल में मंगल करते हैं? ठीक है, अभी हम शुरू करेंगे भक्ति लता। उसके बाद कौन सा है श्लोक? वहां से विषय दो, भक्ति लता। अच्छा, अभी 151 बहुत प्रसिद्ध श्लोक जो आप सब जानते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव,
ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव।
गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज,
गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज।
ब्रह्मांड भ्रमिते, ब्रह्मांड का भ्रमण करके कोनो भाग्यवान जीव, कोई भी एक भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे, मतलब गुरु और कृष्ण की कृपा को प्राप्त करके पाए भक्ति लता बीज, भक्ति लता के बीज को वो प्राप्त करता है गुरु और कृष्ण की कृपा से। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, आप सबको जानते ही हैं। इस श्लोक को आपके भक्ति से शुरुआत से ही ये श्लोक सुनी होगी आप में से सब। ये श्लोक आपको कंठस्थ है ना? ये तो ये महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीजें, तरह तरह की चीजें की कही गई हैं। हाँ, तो कौन ये पढ़िए जरा जोर से, थोड़ा जोर से।
भक्ति लता बीज की प्राप्ति। अपने कर्म से समस्त जीवात्मा ब्रह्मांड भर में भ्रमण कर रहे हैं। कुछ ऊपरी लोकों में जा रहे हैं तो कुछ निचले लोकों में, पर कोई एक विरला जीव कृष्ण की कृपा से प्रामाणिक गुरु के संग को अति भाग्य से प्राप्त करता है। श्री कृष्ण व गुरु इन दोनों की कृपा से वह जीव भक्ति लता बीज को प्राप्त करता है।
इस एक श्लोक के ऊपर ही आज कल परसों चर्चा हो सकती है, ये इतना महत्वपूर्ण है। ऐसे हमने देखा कि चैतन्य महाप्रभु पहले कहते हैं कि 84 लाख योनि है जिनमें की जीवात्मा भ्रमण करते रहते हैं सारे ब्रह्मांड में, तो हम सब जगह घूम चुके हैं, सत्यलोक तपलोक जनलोक, हो सकता है हमारे वहां जीवन हो गए होंगे, नहीं भी होंगे, रसातल तलातल 84 लाख योनियों का अनुभव हम कर चुके होंगे, लेकिन अभी भूल चुके हैं। तो ऐसे भ्रमण करने के बाद कोई भाग्यवान जीव, तो ये भाग्य क्या है, क्या है ये भाग्य जिसके द्वारा किसी को भक्ति मिलती है?
भक्ति गुरु है कृष्ण का संग।
कैसे? अभी अभी क्या बताया?
भक्ति उन्मुक्त सुकृति।
भक्ति
उन्मुख सुकृति।
हाँ, भक्तोन्मुख, भक्तोन्मुखी सुकृति, भक्ति उन्मुखी, वो सुकृति जिसके द्वारा हमें भक्ति मिलती है वो है भक्तोन्मुखी सुकृति। तो ये भक्तोन्मुखी सुकृति के बारे में कौन कोई समझाएंगे कि ये सुकृति क्या चीज है और किस तरह की सुकृतियां होती हैं और इनका भक्तोन्मुखी सुकृति से अंतर क्या है, कोई बताएंगे?
हाँ, सुकृति यानी अच्छा कार्य,
कृति माने कार्य, सुकृति अर्थात अच्छा कार्य अर्थात पुण्य।
तो भक्तोन्मुख सुकृति यानी वो सुकृति जिसमें जाने अनजाने में कोई व्यक्ति या कोई जीव वैष्णव का सेवा करता है या फिर भक्ति का कुछ कार्य जाने में, उसको पता चले बिना कि मैं कुछ सेवा कर रहा हूँ वो सेवा करता है,
क्या कहते हैं?
अज्ञात सुकृति।
अज्ञात सुकृति कभी ज्ञात भी हो सकता है परंतु अज्ञात से शुरू होता है। अच्छा, फिर क्या होता है?
फिर उससे उसका हृदय शुद्धिकरण भी होता है या पुण्य प्राप्त होता है।
किस तरह का पुण्य?
आध्यात्मिक पुण्य।
और किस तरह की सुकृतियां है?
कर्मोन्मुखी,
जैसे भक्तोन्मुखी सुकृति है, और कौन से प्रकार के सुकृतियां है?
भोगोन्मुखी,
भोगोन्मुखी सुकृति और
मुक्ति,
ज्ञानोन्मुखी सुकृति। तो भोगोन्मुखी सुकृति क्या है?
पाय शक्ति, जो कर्म कांड के कार्य करते हैं उससे,
जिस पुण्य के द्वारा भोग की प्राप्ति होती है। जैसे कोई भौतिक पुण्य कार्य होता है, ज्योतिष्टोम और चंद्रमास, ऐसे कितने सारे यज्ञ आदि होते हैं कर्मकांड में, जिनके द्वारा स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, फिर स्वर्गलोक में जाके खूब स्वर्गीय भोग कर सकते हैं, भोग का आनंद ले सकते हैं, सोमरस का पान करना इत्यादि। तो जो साधारण पुण्य है वो भोगोन्मुखी पुण्य है, भोगोन्मुखी सुकृति है। जब पुण्य शब्द का प्रयोग करते हैं ना, वो साधारणतः भोगोन्मुखी सुकृति है। हम गरीबों को दान देंगे तो हम कभी गरीब नहीं बनेंगे, हम भूखों को खिलाएंगे तो हम कभी भूखे नहीं जाएंगे, बीमारियों का हम इलाज करवाएंगे तो हम कभी बीमार पड़ेंगे
दवाई की कमी नहीं
पड़ेगी, दवाई की कमी नहीं पड़ेगी। ये भोगोन्मुखी सुकृति के साधारण पुण्य, और ये कैसे प्राप्त होता है? जो कर्मी लोग हैं, कर्मियों का संग करके, कर्मियों के भी तरह तरह के श्रेणियां हैं, विविध प्रकार के कर्मियां हैं, तो जैसे जैसे हम संग करेंगे वैसे वैसे उस प्रकार के कर्मी हम भी बन जाएंगे और भोगोन्मुखी सुकृति प्राप्त करेंगे। और ये है जो बीज है, फिर हमारे हृदय में ये बीज रहेंगे, आगे चल के फलित होंगे, हमको भोग प्रदान करेंगे, सुख सुविधा प्रदान करेंगे भौतिक क्षेत्र में। फिर ज्ञानोन्मुखी सुकृति क्या है? भोगोन्मुखी सुकृति के द्वारा फिर हम स्वाभाविक रूप से भोग ऐश्वर्य आदि के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और वो सुविधाएं भी प्राप्त होती है। ज्ञानोन्मुखी सुकृति क्या है? कैसे कर्मियों का संग करने से भोगोन्मुखी सुकृति या कर्मोन्मुखी सुकृति होती है, ज्ञानियों का संग करने से उस पाथ पे हमारे आगे बढ़ने की प्रवृत्ति आने लगती है। फिर अगले जन्म में हम देखेंगे कि हम धीरे ढूंढते रहेंगे कि कोई इस तरह के साधु कहाँ है, कहाँ जाएंगे, कौन सी संस्था है, हमारा झुकाव उस तरह के आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेगा ज्ञानोन्मुखी सुकृति होने के नाते। और जिसके अंदर भक्तोन्मुखी सुकृति है, उसने भक्तों का संग किया हुआ है पहले, या तो फिर उसने अज्ञात सुकृति की होगी, कोई भगवान की अनजाने में सेवा की होगी, किसी तरह से कहीं कोई प्रसाद दिया होगा या कुछ ऐसे ऐसे से कोई सेवा की होगी, इसकी वजह से उसको भक्ति की तरफ एक प्रकार का झुकाव हो जाता है स्वाभाविक रूप से। इसको भक्तोन्मुखी सुकृति कहते हैं। तो ये सब इसकी पूंजी, भक्तोन्मुखी सुकृति की पूंजी जब पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाती है, तो फिर वो झुकाव इतना तीव्र हो जाता है कि व्यक्ति फिर भक्तों के संग को ढूंढने लगता है, और जैसे भक्तों का संग मिलता है तो उसे स्वीकार कर लेता है। ये भक्तोन्मुखी सुकृति। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि ये भाग्यवान, कोनो भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए। तो गुरु और कृष्ण की कृपा कौन प्राप्त करता है? भाग्यवान व्यक्ति प्राप्त करता है। और भाग्यवान व्यक्ति कौन है? जिसने भक्तोन्मुखी सुकृति प्राप्त कर ली है पूर्व जन्मों से। तो ऐसे व्यक्ति को गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त होता है, और ऐसी कृपा प्राप्त होना मतलब क्या है? भक्ति लता का बीज उसे मिल जाता है। भक्ति एक लता है, लता यानी जानते हैं ना, क्रीपर। हम लोग यहाँ सब्जियों में ऐसे लताएं बहुत कर रहे हैं, है ना हरिराम प्रभु? कौन से क्रीपर्स हैं हमारे पास?
ढोकला,
दूधी, तेंदली, तो ये ऊपर 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 चलते हैं, किसी का सहारा लेके चलते हैं, ये लता है। तो उसी तरह से भक्ति की लता भी है। तो ये भक्ति लता का बीज हमें गुरु और कृष्ण के प्रसाद से प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसके बाद इसी तात्पर्य में प्रभुपाद ये बताते हैं कि हम भक्त कैसे बनते हैं। तो अगला वाला, अच्छा, कैसे कोई भक्त बनता है, तो कोई इसको समझाए पढ़ के। पहली श्रेणी क्या है?
श्री कृष्ण वैष्णव।
हाँ, तो ये सबसे पहली बात, तो ये क्या है? अज्ञात सुकृति। ऐसे पढ़ो पहला लाइन,
श्री कृष्ण वैष्णव की अज्ञान में सेवा।
हाँ, उससे क्या होता है?
भक्तिमय,
भक्तिमय सुकृति, अर्थात भक्तोन्मुखी सुकृति का संचय हम करते हैं। फिर आगे
श्री कृष्ण की कृपा,
इसके द्वारा कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। कृष्ण की कृपा किस रूप में आती है?
प्रामाणिक
गुरु से भेंट करवाते हैं कृष्ण, और फिर गुरु की भेंट होने के बाद क्या होता है? भक्ति लता बीज हमें मिल जाता है। किस रूप में?
श्रद्धा।
श्रद्धा। और आगे
श्रवण द्वारा अध्यात्म।
फिर हम जब भक्तों के संग में आते हैं, गुरु के निर्देशन में कार्य करते हैं, तो श्रवण द्वारा शिक्षा प्राप्त करते हैं और फिर
शुद्ध भक्तिमय सेवा का प्रारंभ,
शुद्ध भक्तिमय सेवा का प्रारंभ होता है। तो आदमी भक्त कैसे बनता है, ये सारी श्रृंखला है, सारे इतिहास है। तो हम सब इस रास्ते से गुजर के आए हैं, कई जन्मों से ये सब चल रहा है, कितने जन्म हो गए हमें पता नहीं है। तो अपने शब्दों में आप में से कोई समझाए इसको, कौन समझाएंगे सबसे पहले, ऐसे अपने शब्दों में अभी समझाओ इस सारी श्रृंखला को। हाँ ठीक है,
कैसे भक्त बनता है, तो सेवा करते हैं और वो कृपा होती है गुरु के, प्रामाणिक गुरु की भेंट, व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा को बढ़ाते हैं, यानी भक्तिलता बीज को देते हैं, फिर श्रवण कीर्तन द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा प्रामाणिक गुरु के द्वारा मिलती है, इस तरह से वो शुद्ध भक्ति में सेवा का प्रारंभ करते हैं।
बहुत अच्छा, मतलब अभी तक उतनी सुकृति, भक्तोन्मुखी सुकृति नहीं हुई है। कोई व्यक्ति के पास है भक्तोन्मुखी सुकृति, परंतु पर्याप्त मात्रा में अभी तक नहीं है, इसलिए भगवान एक प्रामाणिक गुरु के पास नहीं ले गए हैं अभी तक। और यदि ले भी गए हैं तो उसकी उतनी सुकृति नहीं थी कि वो उस गुरु को स्वीकार कर सके। जैसे कई लोग प्रभुपाद जी के पास आए जब वो अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, और कईयों ने तुरंत प्रभुपाद जी को स्वीकार कर लिया, उनके शरणागत हो गए। कई लोगों ने थोड़ा सम्मान किया, परंतु गंभीरता से उनके आदेशों को स्वीकार नहीं किया, अपने रास्ते में चले गए। तो ऐसा क्यों हुआ? मिलने का अवसर मिल गया उनको एक सद्गुरु से, परंतु आगे चल के स्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि अभी तक उतनी पूंजी उनकी पर्याप्त नहीं थी, तैयारी नहीं थी। लेकिन अभी आगे चल के कभी ना कभी तो वो बने, अब प्रभुपाद जी को मिले हैं तो कभी तो भक्त बनेंगे वो। एक भाग्यवान का उदाहरण श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में देते हैं, नारद मुनि का, अपने पूर्व जन्म में। आप जानते हैं ना, संक्षेप में कौन बताएंगे नारद मुनि के पूर्व जन्म का इतिहास संक्षेप में?
नारद मुनि पूर्व जन्म में एक शूद्रानी मेड सर्वेंट थी, उनके पुत्र थे। तो उन तो चतुर्मास के टाइम कुछ भक्ति वेदांत उनके गांव में आके वहीं रुके थे। तो उनकी मदर, उनकी जो माता जी थी नारद मुनि की, वो उनके यहाँ प्रसाद बनाने का सेवा करते थे बर्तन बने। तो नारद मुनि भी अपने माता के साथ में जाते थे और उनका संग करते थे। फिर उन नारद मुनि ने उन्हें भक्ति वेदांतों की अनुमति लेकर उनके झूठा प्रसाद लेने की अनुमति मांगी और उनका झूठा प्रसाद खाया। और फिर उनके उनको श्रद्धा से उनके पास बैठते थे, सुनते थे, और उनके जाने जाते समय उनसे शिक्षा लेके उनको आगे अब कैसे करना है, भक्ति को आगे जारी कैसे रखना है, और उनसे जाने शिक्षा ली उन्होंने। और फिर उसके बाद उनके जाने के बाद में उसी तरीके से उन्होंने फॉलो करने का प्रयास किया।
उनके माँ का क्या हुआ?
फिर उनके जाने के बाद में एक रात्रि को उनकी माता को सर्प ने काट लिया और उनकी माता की मृत्यु हो गई, तो भी उन्होंने विचलित नहीं हुई और उन्होंने इसको भगवान की कृपा मानकर अपने पथ पर आगे बढ़ते रहे।
और फिर भगवान का साक्षात्कार भी हुआ। तो इस तरह से ये भक्तोन्मुखी सुकृति ये कैसे प्राप्त, भाग्यवान कैसे बने, वो बच्चा कैसे बना, वेदांत आए थे वो, साधुगण आए थे, भक्त आए थे उनके घर में, और वो काफी समय तक वहां रहे, उनकी सेवा की उस बालक ने, और उनका उच्चिष्ट भी ग्रहण किया। वो तो भजन कीर्तन करते रहे, कथा वगैरह करते रहे, उसका लाभ उठाया बच्चे ने, तो इस तरह से वो भाग्यवान बन गया। एक उदाहरण है। और आगे चल के प्रभुपाद जी तात्पर्य में
ये आपने बताया कि एक हमें गुरु मिलते हैं प्रामाणिक गुरु, तो इसके पूर्व जन्म में भी मिलते हैं?
हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यदि उसके पूर्व जन्म में गुरु पाके उसने अपनी भक्ति परिपूर्ण नहीं की होगी, परंतु वो रास्ते में था सही रूप से, तो उसके पुनर्जन्म में भी कोई गुरु मिलेंगे प्रामाणिक। और यदि उसने शुरुआत की होगी परंतु एक गुरु शायद प्राप्त नहीं किया होगा, हो सकता है इसे पहली बार मिल जाए।
महाराज अभी अभी जो ज्ञान है वो तो बहुत हुई है और बहुत जटिल है, कि अगर मेरे की जैसे अगर बुद्धि अगर उसको समझने के लिए असमर्थ है तो फिर उसके लिए क्या?
केवल श्रवण करते रहना चाहिए और जो हमें आचरण हो सके उतना आचरण करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत बड़ा विद्वान बनना है भगवान के धाम में जाने के लिए। भक्ति का सार तो बहुत सरल है, तो उसी सार को हम यदि समझ लें, थोड़ी चीजें तो हमें समझ नहीं, कृष्ण परम सत्य है, देवी देवता कौन है, उनकी उपासना नहीं करनी, कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, हरि नाम लेना चाहिए इत्यादि, तो ऐसे चीजें जब हम ध्यान से समझ लेते हैं और इस रास्ते पे चलते हैं तो फिर निश्चित ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो भी हो, जैसे ऐसे हो भी जाए तो जो उसने लाभ प्राप्त किया है भक्ति के द्वारा वो तो नष्ट नहीं हुआ ना, उसका संबंध तो परंपरा से जुड़ गया, तो इसलिए उसकी कोई हानि नहीं होती। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जो भी उसने प्राप्त किया है उसका नुकसान नहीं होता। जो भी उसने जप किया होगा, तप किया होगा, सेवा की होगी, उसका लाभ तो मिलकर ही रहेगा ना, वो तो नहीं जाएगा कहीं। इसलिए नारद जी कहते हैं भागवत में कि भक्ति करने से जो लाभ मिलता है वो क्षीण नहीं होता, और यदि वो व्यक्ति इस जन्म में असफल हो भी जाए भक्ति करने में, फिर भी क्या नुकसान उसका हुआ। दूसरी ओर कोई भौतिकतावादी व्यक्ति है जिसने अपने संसार के कर्तव्यों को बहुत अच्छी तरह से निभाया है परंतु भक्ति नहीं की, तो उसने क्या पाया है? अच्छा, आगे क्या है? तो अभी गुरु प्रसाद की बात करते हैं। ये गुरु प्रसाद अर्थात गुरु की कृपा, ये क्या है?
गुरु भगवान द्वारा उनकी करुणा वितरित करने करती प्राप्त कर चुके होते हैं। गुरु शिष्य को श्री कृष्ण की सेवा का आशीर्वाद देते हैं, जो कि सर्वोच्च भेंट है।
तो सबसे बड़ा भेंट कोई भी किसी को क्या दे सकता है? कृष्ण भक्ति। तो गुरु द्वारा जो कृपा प्राप्त होती है वो ये इन तीन चीजों के हैं। फिर से ये तीन लक्षण पढ़िए कि गुरु प्रसाद, क्योंकि ये इस श्लोक में बताया ना गुरु कृष्ण प्रसाद है, तो गुरु प्रसाद क्या है, कृष्ण प्रसाद क्या है, प्रसाद अर्थात कृपा। तो फिर से पढ़िए गुरु प्रसाद क्या है।
गुरु भक्ति लता देने वाले हैं। गुरु शिष्यों को शिष्य को श्री कृष्ण की सेवा का आशीर्वाद देते हैं, जो कि उच्च भेंट है।
बहुत अच्छा। अच्छा, अभी अगला वाला इसमें हम देखेंगे कि कृष्ण प्रसाद क्या है। हम देख चुके हैं कि गुरु प्रसाद क्या है, अभी देखेंगे कृष्ण प्रसाद क्या है। कोई पढ़िए जोर से, कृष्ण प्रसाद क्या है?
कृष्ण योग्य शिष्य को प्रामाणिक गुरु से भेंट करवाते हैं।
हाँ, तो पहला लक्षण है कृष्ण की कृपा क्या है,
प्रामाणिक गुरु से भेंट।
एक साथ पढ़ेंगे,
कृष्ण
कृष्ण प्रामाणिक रूप से हैं।
ये कृष्ण की कृपा है, कृष्ण प्रसाद। और फिर
कृष्ण की कृपा से व्यक्ति गुरु प्राप्त करता है, वह गुरु के पास से भक्ति में परिपक्व बनता है।
तो जब भक्तों की सुकृति बढ़ जाती है तो भक्ति लता बीज मिलने के लिए क्या होता है, कृष्ण प्रसाद आता है। किस रूप में?
गुरु
गुरु गुरु गुरु को भेजते हैं, और गुरु जब भेजते हैं तो फिर गुरु भक्ति का बीज, भक्ति लता का बीज दान देते हैं। अब ये बीज के बारे में चर्चा करते हैं कि ये भक्ति लता का बीज क्या है। हमने भाग्यवान क्या है ये देखा सबसे पहले कि ब्रह्मांड भ्रमित है, ब्रह्मांड में भ्रमण करना। दूसरी बात ये देखा कि भाग्यवान क्या चीज होता है। तीसरी बात हमने देखा गुरु प्रसाद क्या है, कृष्ण प्रसाद क्या है, और अभी हम देखेंगे कि ये भक्ति लता बीज क्या है। तो इस श्लोक के हर एक शब्द को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तो कोई जोर से पढ़े
भक्ति लता बीज।
हाँ।
कोई भी चीज का एक ही कारण बीज होता है। दूसरा, भक्ति लता बीज वह बीज है जो भक्ति का मूल कारण है। यह बीज गुरु व कृष्ण की कृपा से प्राप्त होता है। यह बीज अनेकों यम नियम पद्धति इनसे बना होता है, जिससे व्यक्ति भक्ति में प्रशिक्षित हो जाता है। यह बीज अन्य भिलाषा बीज से भिन्न है, जिसका अर्थ है कर्म व ज्ञान का बीज।
ठीक है, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में ज्यादा आएगी। प्रभुपाद अगले श्लोक में तात्पर्य इसके बारे में और विस्तार में कहेंगे, तो उसको यही इस समय रहने देते हैं और आगे चल के चर्चा करेंगे। तो आगे अभी अगला श्लोक पढ़ते हैं। माली होना करे से बीज आरोपण,
माली होना करे से बीज आरोपण,
श्रवण कीर्तन जले करे से चना,
श्रवण कीर्तन जले करे से चना।
तो महाप्रभु कहते हैं कि माली, जब ये व्यक्ति भक्तिलता बीज को प्राप्त करता है तो उसको माली बन जाना चाहिए। माली बन के उस बीज का आरोपण करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए आरोपण? अपने हृदय में। और फिर बीज का आरोपण जब माली कहीं मिट्टी में करता है तो क्या करता है? फिर सिंचन करता है ना, तो जल अर्पण करता है। तो भक्ति लता बीज हम जब हृदय में आरोपित करते हैं तो फिर सिंचन क्या है?
श्रवण
कीर्तन। श्रवण कीर्तन के जल से इसकी सिंचाई करनी चाहिए, जिसके द्वारा ये भक्ति लता बीज अभी पौधे के रूप में प्रकट हो जाएगा।
पिछले तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे कि कृष्ण भगवान हृदय में, सबके हृदय में है, और जब हम इच्छा करते हैं तो कृष्ण को इच्छा पूर्ति करते हैं। तो अगर हम किसी भक्त के संग में आते हैं और ऐसा एक इच्छा प्रकट होता है कि मैं भी भक्ति करूं करके, तो यही भक्ति लता बीज है।
ये इच्छा हमारे पास थी, परंतु वो एक सुप्त अवस्था में थी। भक्तों को मिलके वो पुनः जागृत होती है। वो इच्छा, पहली बात यह है कि भक्तों को मिलने कैसे, और मिलने के बाद भी हमारे हृदय में भक्ति की इच्छा जागृत हुई कैसे, इसके पीछे इतिहास है। भाग्यवान भक्तोन्मुखी सुकृति थी, इसलिए भगवान ने हमें किसी भक्त से संपर्क करवा दिया, और फिर आगे चल के हम और भजन क्रिया में लग जाएंगे। ये सब इस कारण से होता है, इसका इतिहास है। ये
बीज एक्चुअली जैसा
वो आगे देखेंगे अभी। बीज वास्तव में कब आता है वो देखेंगे। अभी इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाने वाले हैं। भाग्यवान, भाग्यवान भक्ति उन्मुखी सुकृति, इसलिए हमने पिछले जन्मों से सुकृति करते आए हैं, भजन भक्ति उन्मुखी सुकृति, कभी प्रसाद लिया, कभी कृष्ण का नाम लिया, कभी कुछ सुना, कभी कुछ भक्तों का संग किया, ऐसे करते 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 अनेक जन्मों से, बहुत सारे जन्मों के बाद कभी फिर एक अवसर मिलता है, वो एक अचिंत्य बात है। सबसे पहली बार तो हुआ, अनेकों के हो सकते हैं, जैसे कभी कितने पेड़ योनि भी है उनको कभी मिल सकता है, पहली बार ये सब के लिए है। एक ब्रह्मचारी है वो लंदन में, वो पहले भक्त बने, उसके मित्र बता रहे थे कि ये भक्त को आग लगी थी, आग लगी थी मतलब भक्ति की आग तो ये सब सारे दुनिया को का उद्धार करना चाहता था, तो केवल दुनिया का मनुष्यों का नहीं, वो पेड़ों का। तो एक बार उसने उस भक्त को बोला, चलो चलो हम जाते हैं जंगल में। तो जंगल में क्यों जाना है? बोले सारे पेड़ों का उद्धार करते हैं। तो जाके खूब कीर्तन किया पेड़ों के उद्धार के लिए, ये भावना थी। अब वो पेड़ कैसे आए, उनका क्या स्वीकृति था कि वो कोई भक्त आएगा वहां कीर्तन करेगा, जंगल में जाके आधा एक घंटा कीर्तन किया खूब वहां पे सब पेड़ पौधों को उद्धार करने के लिए। ये एक अचिंत्य बात है, कहां से शुरुआत हुई, कहां क्या हुआ, ये कोई कह नहीं सकता है। लेकिन स्वेच्छा, कोई ना कोई स्वेच्छा होती है, फ्री विल, कहां से स्वेच्छा शुरू हो गई, प्रारंभ हो गई, हो गया।
महाराज वैष्णव की करुणा से भी होगा, वैष्णव की करुणा।
हाँ, लेकिन प्रश्न ये आता है कि एक को करुणा क्यों मिला, दूसरे को क्यों नहीं मिला? एक ने स्वीकार किया, दूसरे ने स्वीकार क्यों नहीं किया? तो तात्पर्य में यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये गुरु प्रसाद क्या है, कृष्ण प्रसाद क्या है, हम देख चुके हैं। अब भक्ति लता बीज के बारे में भी हम देख चुके हैं। तो भक्ति लता बीज के बारे में इतना महत्वपूर्ण है, फिर से कोई पढ़िए।
भक्ति लता बीज, कोई भी चीज का एक ही कारण होता है, भक्ति लता बीज वह बीज है जो भक्ति का मूल कारण है।
जैसे देखिए, जब हम कोई भी कार्य करने जाते हैं तो कोई मन में योजना बनाते हैं ना पहले, जैसे समझो कि प्रसाद बनाना है, तो प्रसाद यूं ही तो नहीं बन जाता ना, तो चलो प्रसाद होना चाहिए, प्रसाद बन गया, ऐसे नहीं होता। हम बैठ के कुछ सोचते हैं कि प्रसाद क्या बनाएंगे, उसके लिए क्या कौन सी चीजें आवश्यक है, कौन कौन चाहिए उसके लिए बनाने के लिए, बहुत सी योजनाएं वगैरह सब बनाने पड़ते हैं। तो ये एक बीज होता है कि हम बनाना चाहते हैं। तो किसी भी प्रकल्प, किसी भी कार्य के पीछे एक योजना होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं किसी भी चीज के लिए, जैसे पेड़ के लिए एक बीज होता है, हमारे लिए भी एक बीज होता है, किसी कार्य के लिए भी एक बीज होता है, उसी तरह से भक्ति के लिए भी कोई बीज होना चाहिए ना। कोई भी चीज बीज के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता। बीज का रूप अलग अलग हो सकता है, पेड़ का बीज है वो एक तरह का होता है, और किसी कार्य का बीज जो हमारे मन में होता है योजना के रूप में वो अलग हो सकता है, परंतु हर एक चीज के लिए बीज की आवश्यकता होती है, ये पहली बात है। तो उसी तरह से भक्ति के लिए भी बीज है। हाँ, आगे पढ़ो।
यह बीज गुरु व कृष्ण की कृपा से प्राप्त होता है।
हाँ,
यह बीज अनेकों यम नियम पद्धतियां इनसे बना होता है, जिससे व्यक्ति भक्ति में प्रशिक्षित हो जाता है। यह बीज अन्याभिलाषिता बीज से भिन्न है, जिसका अर्थ है कर्म व ज्ञान का बीज।
तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भक्ति लता बीज है क्या। कोई ऐसा बीज है कि जैसे का बीज होता है जो हमारे हृदय में कोई हम निगल लेते हैं वो चले जाता है, है क्या ये बीज क्या है? तो यहाँ जो भी हमारे यम नियम पद्धतियां इनसे बीज बनता है, जो भी हमें नियम बताए जाते हैं भक्ति में, आदेश दिए जाते हैं, जप करो, कीर्तन करो, भागवत का अध्ययन करो, श्रवण करो, कृष्ण प्रसाद पाओ, कृष्ण के अर्चा विग्रह का दर्शन करो, प्रचार करो, पुस्तक वितरण करो, चार नियमों का पालन करो, ये सब भक्ति लता बीज है। इन समस्त जितने भी हमारे आदेश नियम आदि हैं, विधि निषेध हैं, उन सबको यदि मिलाया जाए तो इन सबको भक्ति लता बीज कहते हैं, क्योंकि इन नियमों को इन आदेशों को हम स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है भक्ति लता बीज। अंग्रेजी में प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं, द मेथड्स रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय विच वन इज परफेक्टली ट्रेन्ड इन डिवोशनल सर्विस कॉन्स्टिट्यूट द भक्ति लता बीज और सीड ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो वो सारे नियम, वो सारे पद्धतियां जिनके द्वारा हम भक्ति में अच्छी तरह से प्रशिक्षित हो सकते हैं, इनको भक्ति लता बीज कहते हैं। तो आप में से कोई समझाइए कि भक्ति लता बीज क्या है?
गुरु के पास
नहीं, अभी अभी जो हमने बताया
भक्ति लता बीज कहते हैं।
कोई उदाहरण? जब हम भक्तों के संग में आते हैं, सबसे पहले हमें कोई ऐसे आदेश मिलते हैं ना, कोई नियमों के बारे में, आप मंदिर आते रहिए, आप प्रवचन सुनिए, कीर्तन में आइए, किताब पढ़िए, ये अभी एक आदेश मिल रहा है, फिर दूसरा आदेश मिलेगा, फिर धीरे धीरे से हमें पता चलेगा अरे इतने सारे नियम है यहाँ पे, ये करना ये करना ये करना, वो नहीं करना वो नहीं करना। इन सारे नियमों को मिलाकर ये वो संपूर्ण जो है वो बीज, भक्ति लता बीज, ठीक है ना। तो ऐसा कोई वो छोटा ये नहीं है जो हमको खाना है या कुछ, वो आसान हो जाता था, कोई गोली खा ली भक्ति हो गया, भक्ति। लास्ट पॉइंट,
यह बीज अन्याभिलाषा बीज से भिन्न है, जिसका अर्थ है कर्म और ज्ञान का बीज।
तो यदि हमें किसी प्रमाणिक गुरु से भक्ति लता बीज नहीं मिलती है, बीज तो मिलते ही रहेंगे संसार में, हमारे जीवन के अनुभव में तरह तरह के बीज मिलते रहते हैं, हमें लोग तरह तरह से हमको उपदेश करते हैं, आदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, अज्ञान देते हैं, तो हम तरह तरह के बीजों को इकट्ठे करते आए हैं अनादि काल से, सब भरे हुए हैं हमारे हृदय में। तो भक्ति लता बीज नहीं आएगी तो ये अन्य बीज सारे आएंगे, या भक्ति लता बीज आएगी तो उस समय अन्य बीजों को हम के ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे।
महाराज, क्या ये बीज संस्कार जैसा है?
हाँ, संस्कार जैसे ही है, और भी आगे चल के हम कब इसको प्राप्त होगा तब वो भी हम देखते हैं। आदेश का पालन जब हम करते हैं, प्रभुपाद जी कहते विशेष रूप से दीक्षा के समय ये भक्ति लता बीज दी जाती है एक औपचारिक रूप में, परंतु वास्तव में जब भक्त आदेशों को हृदय से स्वीकार कर लेता है तभी से वो भक्ति लता बीज आ जाती है। शिक्षा और दीक्षा ये दो चीजें होती है ना, जब व्यक्ति हृदय से इनको ग्रहण करता है इन आदेशों को, तो भक्ति लता बीज आ जाती है हृदय में। किसी के द्वारा तो ग्रहण कर रहा है ना, ऐसे नहीं कि अचानक उसने बस शुरू कर दिया, किसी ने कहा होगा, किसी ने कहीं से पढ़ा होगा, तो कहीं से तो प्राप्त किया उसने, और जब उसको पूर्णतया ग्रहण करता है तब वो भक्ति लता बीज को प्राप्त कर देता है। अगला वाला, भक्ति लता बीज प्राप्त करने की पात्रता, उसको पढ़िए।
जो श्रद्धालु है अतः गुरु व कृष्ण को प्रसन्न करता है, जो श्रद्धालु नहीं है वह गुरु कृष्ण को अप्रसन्न करता है। दीक्षा के द्वारा भक्ति लता बीज प्राप्त, अन्य अभिलाषा बीज प्राप्त।
तो जो गुरु और कृष्ण के प्रति श्रद्धालु होते हैं वो दीक्षा के द्वारा भक्ति लता बीज को प्राप्त करता है, और जो श्रद्धालु नहीं है और गुरु कृष्ण को अप्रसन्न करता है तो उसे भक्ति लता बीज नहीं मिलता। फिर कौन से बीज मिलते हैं? अन्याभिलाषा बीज, अन्य अभिलाषाओं के बीज मिल जाते हैं। कर्म बीज, ज्ञान बीज, भोग बीज, बहुत सारे बीज ऐसे हैं जो मिल जाते हैं उसको। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि ये भक्ति लता बीज उस समय प्राप्त होती है जब भक्त दीक्षित होता है प्रामाणिक गुरु से, और ऐसे गुरु की कृपा प्राप्त करने से उन आदेशों को दोहराना चाहिए, और इसे श्रवण कीर्तन कहते हैं। तो जब गुरु कृष्ण की कृपा से भक्ति लता बीज मिलती है तो सिंचन करना, जल देना बहुत आवश्यक है श्रवण कीर्तन के द्वारा। तो किस तरह से भक्ति लता बीज को जल प्रदान किया जाता है इसके बारे में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, पढ़ते हैं। भक्ति लता बीज का सिंचन पढ़िए।
इसको इसका अर्थ है गुरु के वचनों को दोहराना। दूसरा, भक्तों के संग में रहने का अर्थ है श्रवण कीर्तन की पद्धति को करना। तीसरा, यह कीर्तन के लिए भी अपात्र है।
तो ये है श्रवण कीर्तन। श्रवण कीर्तन के बिना भक्ति लता बीज आगे पौधे के रूप में प्रकट नहीं होगी। जिस तरह से एक पौधा जमीन में है, मिट्टी में है, और उसको जल नहीं दिया तो फिर वो आगे बढ़ेगा नहीं, पौधा नहीं बनेगा, वैसे का वैसे रहेगा। लेकिन जब हम कोई पौधे को डालते हैं और उसमें पानी देते हैं तो फिर अच्छी तरह से वो पौधा बढ़ने लगता है। उसी तरह से हमारी भक्ति लता, तो हमारे भक्ति जीवन में भी हमें चाहिए कि हमारी श्रवण कीर्तन बहुत मजबूत हो। ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बुनियाद है, प्लेटफॉर्म, फाउंडेशन, नींव है। हमारे श्रवण कीर्तन यदि अच्छा रहा तो हमारी भक्ति लता अच्छी तरह से बढ़ेगी। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, श्रवण कीर्तन के प्रति लापरवाही हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आगे फिर अगले श्लोक को पढ़ते हैं। हाँ,
ये भक्ति लता बीज जो दिया जाता होती है उसको तो भक्ति लता बीज भक्ति मतलब कृष्ण का भक्त बनना ये स्वरूप।
अच्छा, एक उदाहरण देते हैं। एक बच्चा है, नवजात शिशु है, उसको चलना नहीं आता लेकिन चलने की प्रवृत्ति उसके अंदर है। अभी जब तक वो अभ्यास नहीं करेगा चलने की तब तक वो चल नहीं पाएगा। अभी अभ्यास करने पर भी वो तभी चल पाएगा जबकि उसके अंदर वो प्रवृत्ति है। तो उसको चलाने के लिए उसके जो बड़े होते हैं, माता पिता वगैरह होते हैं, वो सहायता करते हैं। चलो उठो उठो, ऐसे पकड़ते हैं, पहले उसको शुरुआत में पकड़ के रखते हैं, चलो चलो चलो, वो गड़गड़ाता है, गिर जाता है, फिर भी उसको फिर से उठाते हैं, चलो चलो चलो, हाथ पकड़ के ले जाते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। वैसे उसके अंदर चलने की प्रवृत्ति पहले से है, परंतु जब तक वो अभ्यास नहीं करेगा तब तक वो प्रवृत्ति प्रकट नहीं होगी, फलित नहीं होगी। और उस अभ्यास को करने के लिए कोई प्रशिक्षण देने वाला चाहिए जो आदेश देगा, चलो उठो बैठो चलो। उसी तरह से हमारे अंदर भी नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम
श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय।
कृष्ण भक्ति है परंतु उसे फलित या प्रकट कराना है पुनः, अभी बीज रूप में है परंतु इन आदेशों का पालन करके, प्रशिक्षण को प्राप्त करके, कृपा को प्राप्त करके फिर उसी भक्ति को पुनः जागृत करते हैं। ये तो केवल आदेश है ना, आदेशों का पालन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा लाभ? यदि हमारे अंदर वो प्रवृत्ति ही नहीं होती भक्ति की तो आदेशों का पालन जितना भी करते वो नहीं आता उसे। जैसे कि एक पक्षी का जो बच्चा होता है उसको चलने के लिए सिखाने से कोई लाभ नहीं है, वो तो उड़ेगा, उसकी प्रवृत्ति है उड़ने के लिए, तो माता पिता उसे सिखाते हैं, प्रशिक्षण करते हैं उड़ने के लिए, तो वो अभ्यास कर लेता है, प्रैक्टिस कर लेता है, फिर वो आराम से उड़ सकता है। लेकिन मनुष्य का बच्चा है, उसको बोलो कि तुम हाथ ऐसे ऐसे करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, जितना भी अभ्यास करेंगे क्या वो उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाएगा। क्यों नहीं?
प्रवृत्ति नहीं,
क्योंकि उस शरीर में प्रवृत्ति है ही नहीं। तो दोनों चीजें चाहिए, वो प्रवृत्ति भी चाहिए और वो अभ्यास चाहिए जो प्रशिक्षण के द्वारा आता है। अभ्यास कैसे आता है? आदेशों के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा। तो उसी तरह से यदि हमारे अंदर प्रवृत्ति नहीं होती तो आदेश कितने भी मिलते हम नहीं कर सकते। दूसरी ओर प्रवृत्ति होने पर आदेश नहीं है, अभ्यास नहीं है, फिर भी वो प्रवृत्ति वैसे के वैसे रहे सुप्त अवस्था। तो प्रवृत्ति है, अब उसको जागृत करने के लिए ये सारे आदेश हैं। ठीक है, अभी धीरे धीरे वो प्रकट होने लगता है, चेतो दर्पण मार्जना। तो हम क्या कर रहे हैं, एक उपजाऊ जमीन में बीज बो रहे हैं। वही बीज यदि किसी बंजर भूमि में बो दिया होता तो बीज फलित नहीं होगा। उसी तरह से एक ऐसे अयोग्य व्यक्ति को गुरु उपदेश दे कि तुम ऐसे करो, जप करो, और उसकी वो प्रवृत्ति नहीं है, वो सुकृति नहीं है उसकी, वो नहीं स्वीकार करेगा। परंतु जो एक उपजाऊ खेत के समान है जिसका हृदय, वो उन आदेशों को स्वीकार करेगा। ठीक है, स्पष्ट हो गया? हाँ, ये मन है, मन हमारे लिए बहुत कुछ कहता है, कभी ऐसे कभी वैसे। इसलिए कल हम मन की बात कर रहे थे ना, मन की परवाह नहीं करना। आतुर जो भक्त आतुर है ना, ऐसे आतुर भक्तों का संग करते रहना। जैसे आतुर भक्तों का संग करते रहेंगे तो हमारे अंदर भी वही भाव, वही उत्साह, वही आतुरता आ जाएगा। जैसा संग वैसा रंग, साथ साथ हमें भी ऐसे निष्ठावान होना चाहिए, श्रवण कीर्तन के द्वारा सिंचन करना चाहिए। आतुरता नहीं आने का कारण ये भी एक है कि हम अपने सिंचन को ठीक से नहीं कर रहे हैं, भक्ति लता बीज के ऊपर जल पर्याप्त मात्रा में नहीं डाल रहे हैं। यदि हमारा श्रवण कीर्तन कमजोर है तो उत्साह नहीं आएगा। यदि उत्साह हमारा कम हो रहा है भक्ति में तो सर्वप्रथम हमें ये देखना है श्रवण कीर्तन हो रहा है कि नहीं ठीक से। दूसरी बात, कोई अपराध कर रहे हैं कि नहीं, हम दो चीजें देखनी चाहिए। यही दो कारण हो सकते हैं उत्साह को कम होने के लिए। हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, जो भी हो दोनों साथ में, क्योंकि पहली दीक्षा में हमें थोड़े मूल उपदेश मिलते हैं, दूसरी दीक्षा के द्वारा हमें मूर्ति पूजा, ऋषि विग्रह की पूजा करने के लिए आदेश मिलते हैं, थोड़े और मंत्रों का जप आदि करने के लिए आदेश मिलते हैं। लेकिन ये प्रथम दीक्षा में व्यक्ति दीक्षित माना जाता है ना, बल्कि यदि किसी ने हृदय में भी स्वीकार कर ली है तो भी वो पर्याप्त है, क्योंकि वो आदेशों का पालन हृदय से कर रहा है। दूसरी ओर किसी ने दीक्षा प्राप्त करके नियमों का पालन नहीं कर रहा है, जप नहीं करता, कुछ नहीं करता, तो फिर क्या लाभ? तो ये केवल दीक्षा की बात जो हो रही है, ये केवल एक औपचारिकता की बात नहीं है कि चलो मैंने दीक्षा ले लिया, क्यों मैं यज्ञ में बैठा और मुझे एक नाम मिल गया, नया नाम मिल गया मुझे, इतना काफी नहीं। हृदय से उसने स्वीकार किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो अभी 12 बज गए, अभी हम आज दोपहर के लिए कथा यहीं विराम लेते हैं और इसके बाद शाम को हम मिल लेते हैं। कितने बजे मिलना है? साढ़े तीन है। कितने बजे मिले?
तीन
बजे काफी है, आराम वगैरह सब हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 3 बजे मिलते हैं और फिर से कथा करेंगे थोड़ी देर। फिर आज कम से कम भक्ति लता बीज तो कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आज नहीं हो पाएगा तो कल सुबह लेटेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है हम सबके लिए। कम से कम इस विषय को तो हम समाप्त करेंगे। मैं भी प्रयास करूंगा माधव प्रभु को बुलाने के लिए आज शाम या तो कल, आके हमें भी कुछ वो सुनाए सबको, कोई कथा करे, कोई या गोकुल धाम के बारे में भी बताए कि प्रभुपाद जी ने ऐसे क्या क्या आदेश दिए थे इत्यादि। ठीक है, तब तक इस वातावरण का आप लाभ उठाइए। और हम ऐसे सोच रहे हैं कि शाम की जो कथा है वो भी थोड़ा जल्दी समाप्त करके फिर हम संध्या आरती में सब इकट्ठे होंगे, सब लोग हम सब इकट्ठा हो जाएंगे 6:30 बजे से। संध्या आरती के बाद बैठ के 1.25 घंटा कीर्तन करेंगे, जैसे आपने थोड़े भक्तों ने किया था कल। ठीक है, कीर्तन भी ज्यादा होना चाहिए ना, तो हम बैठ के वहां कीर्तन करेंगे। तारों के बारे में ठीक है, वो कीर्तन की बात करें। केवल जो कीर्तन में आएंगे उनके लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। आपको ज्यादा भारी तो नहीं लग रहा है?